ವಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರ್ ಉನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಕದಾ ಮಯ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಬೋಲಿಯೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹಮ್ ಸಬ್ ಭಾರತವಂಶಿ ಲೋಗೋಂ ಕಾ ಯೇ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಪರಮ ಭಾಗ್ಯ ಹೈ ಕಿ ಹಮಾರೇ ದೇಶ್ ಮೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹೈ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹೀ ಹಮಾರೇ ದೇಶ್ ಕಾ ಅಲಂಕಾರ ಹೈ, ಹಮಾರೇ ದೇಶ್ ಕಾ ವೋ ಏಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೈ ಜೋ ಸಬ್ ಧರ್ಮೋ ಕೆ ಲೋಗ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಸಬ್ ದೇಶ್ ಕೆ ಲೋಗ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಔರ್ ಉಸ್ಮೇ ಕೋಯಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ನಹೀ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಹೀ ಹೈ. ಅಗರ್ ಆಪ್ ಬಾಕಿ ಕೋಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆಂಗೇ, ವೇದ ಪುರಾಣ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರೆಂಗೇ, ತೋ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ವೋ ಉಸ್ ಪರ್ ವಿವಾದ್ ಕರೇ, ಉಸ್ಕೋ ಮಾನೇ ನಹೀ ಮಾನೇ. ಲೇಕಿನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಐಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೈ ಜೋ ನಿರ್ವಿವಾದ್ ಹೈ. ಪೂರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೇ ಜಿತ್ನೆ ಭೀ ಪಂಡಿತ್ ಹೈ, ಜಿತ್ನೆ ಭೀ ಧರ್ಮೋ ಕೆ, ವೋ ಸಬ್ ಗೀತಾಜಿ ಕೋ ಮಾನತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಯೇ ಹಮಾರಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕಿ ಹಮಾರಿ ಭೂಮಿ ಮೇ ಇಸ್ಕಾ ಕಥನ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಥಾ, ಔರ್ ವೋ ಭಗವಾನ್ ಹಮಾರಿ ಭೂಮಿ ಮೇ ಜನ್ಮ ಲಿಯೆ, ಅವತಾರ ಲಿಯೆ, ಔರ್ ಉನ್ಹೇ ಹಮಾರಿ ಭೂಮಿ ಮೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಮ ಕೆ ಜಗಹ ಪರ್ ಇಸ್ ಸುಂದರ್ ಪ್ರವಚನ ಕಿಯಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕೋ. ತೋ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮೇ ಇಸ್ಕಾ ಇತಿಹಾಸ ಐಸಾ ಆಪ್ ಜಾನತೆ ಹೈ ಸಬ್ ಲೋಗ್, ಮಹಾಭಾರತ ಕಾ ಯುದ್ಧ ಹೋನೆ ಕಾ ತಯ ಹೋ ಗಯಾ, ಔರ್ ಪೂರಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿತ್ನಾ ಥಾ ಜಿತ್ನೆ ಭೀ ದೇಶ್ ಥೇ ವೋ ಸಬ್ ದೇಶ್ ದೋ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇ ಡಿವೈಡ್ ಹೋ ಗಯೆ, ಔರ್ ಕುಛ ಪಾಂಡವೋ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಮೇ ಗಯೆ, ಕುಛ ಕೌರವೋ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಮೇ ಗಯೆ, ಔರ್ ಕೌರವೋ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಮೇ ಜ್ಯಾದಾ ಗಯೆ. ಹಾಂ, ಟೋಟಲ್ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಥಾ, ಏಕ್ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ 85 crore ಕಾ ಹೋತಾ ಹೈ, ತೋ 11 into that ವೋ ಕೌರವೋ ಕೆ ಪಾಸ್ ಮೇ ಥಾ, ಔರ್ 7 ಪಾಂಡವೋ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಮೇ ಥಾ. ಔರ್ ಉಸ್ ಮೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಪಾಂಡವೋ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಮೇ ಗಯೆ. ಉನ್ಹೋನೆ ಕಹಾ ಮೈ ತೋ ಶಸ್ತ್ರ ನಹೀ ಉಠಾಂಗಾ, ಔರ್ ನಿಯತ್ಥಾ ಖಡಾ ರಹೂಂಗಾ, ಔರ್ ಏಕ ತರಫ ಮೇರಿ ನಾರಾಯಣಿ ಸೇನಾ ಹೋಗಿ, ಏಕ್ ಅಕ್ಷಯಣಿ ಚುನ್ ಲೋ. ತೋ ಅರ್ಜುನ್ ನೆ ಕಹಾ ನಹೀ ಆಪ್ ನಿಯತ್ತೆ ಹೋ ತೋ ಚಲೇಗಾ, ಮುಜೆ ಹೀ ಆಪ್ ಹೀ ಚಾಹಿಯೇ. ತೋ ದುರ್ಯೋಧನ್ ಮನ್ ಹೀ ಮನ್ ಮೇ ಲಡ್ಡು ಖಾ ರಹೇ ಥೇ ಕಿ ಮೂರ್ಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈ ವೋ, ವೋ ನಿಯತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಲೇಕೆ ಕ್ಯಾ ಕರೆಂಗೇ, ಮೈ ನಾರಾಯಣಿ ಸೇನಾ ಲೂಂಗಾ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ನಾರಾಯಣಿ ಸೇನಾ ಕಾ ಐಸಾ ವರದಾನ್ ಥಾ ಕಿ ನಾರಾಯಣಿ ಸೇನಾ ಕೋಯಿ ವಧ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ನಾರಾಯಣಿ ಸೇನಾ ಕಾ ಕೋಯಿ ವಧ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ, ಮತಲಬ್ ಏಕ್ ಭೀ ಸೈನಿಕ ಮರೇಗಾ ನಹೀ ಉಸ್ಕಾ, ಐಸಾ ಉನ್ಕಾ ವರದಾನ್ ಥಾ. ತೋ ಉನ್ಹೋನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಅಗರ್ ಯೇ ಐಸಿ ಸೇನಾ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಮೇ ಹೈ ತೋ ಮೇರೆ ಹೀ ವಿಜಯ ಹೈ. ಔರ್ ಫಿರ್ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಹೋನೆ ಜಾತಾ ಹೈ, ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಅಪ್ನಾ ಅಪ್ನಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೇ ಲೇತೆ ಹೈ, ಔರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಹೇ ಭಗವನ್ ಆಪ್ ಮುಜೆ ದಿಖಾಯಿಯೆ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಖಡೆ ಹೈ, ಸೇನೆಯೋರ್ ಉಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ದೋನೋ ಸೇನಾ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಮುಜೆ ಲೇ ಜಾಯಿಯೆ, ಔರ್ ದಿಖಾಯಿಯೆ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಯುದ್ಧ ಕೆ ಲಿಯೆ ಉತ್ಸುಕ ಹೈ, ಹಾಂ ಯುದ್ಧ ಜೀತನೆ ಕೆ ಇಚ್ಛಾ ಸೆ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಯುದ್ಧ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಹೋಯೆ ಹೈ, ಕೌನ್ ಮೇರೆ ಪಕ್ಷ ಮೇ ಕೌನ್ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಮೇ ಹೈ. ಜಬ್ ವೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಬೀಚ್ ಮೇ ತೋ ದೇಖತೆ ಹೈ ಕಿ ಅರೇ ಸಭಿ ತೋ ರಿಶ್ತೆದಾರ್ ಹೈ, ಇಧರ್ ಭೀ ರಿಶ್ತೆದಾರ್ ಹೈ, ಉಧರ್ ಭೀ ರಿಶ್ತೆದಾರ್ ಹೈ, ಸಭ ಯೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಾ ಏಕ್ ಮೇಲಾ ಹೈ, ಕೇವಲ ಕುಛ ಲೋಗ್ ಇಸ್ ತರಫ್ ಖಡೇ, ಕುಛ ಲೋಗ್ ಇಸ್ ತರಫ್ ಖಡೇ, ಔರ್ ಇಸ್ ತರಫ್ ಮೇರೆ ಖಿಲಾಫ್ ಯುದ್ಧ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೇರೆ ಪರಮ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮದೇವ್ ಖಡೇ ಹೈ, ಜಿನ್ಕೆ ಗೋದ್ ಮೇ ಖೇಲಾ ಹೂಂ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಸಾಮ್ನೆ ಖಡೇ, ಜಿನ್ಕೆ ಹಾಥೋ ಸೆ ಮೇನೆ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ ಸಿಖಿ ಹೈ, ಸಬ್ನೆ ಸಿಖಿ ಹಮ್ನೆ, ಔರ್ ಮಾಮಾ ಶಲ್ಯ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಭೀ ಉಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇ ಹೈ, ಔರ್ ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಚಚೇರೆ ಭಾಯಿ ಹೈ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಪುತ್ರ ಹೈ ಸಬ್, ಬಹುತ್ ದುಃಖ ಹುವಾ ಹಮ್ಕೋ. ಔರ್ ಜಿನ್ಕೆ ಧನುಷ್ಯ ಕಿ ಟಣತ್ಕಾರ ಸೆ, ಹಾಂ ಜೊ ಹಮ್ ಖೀಚ್ತೆ ನಾ ಉಸ್ಕೊ ಛೋಡ್ತೆ ಖೀಚ್ ಕೆ ಉಸ್ಕೊ ಟಣತ್ಕಾರ ಕಹತೆ ಹೈ, ಪ್ರತ್ಯಂಚಾ ಉಸ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಸೆ ಪೂರಾ ವಿಶ್ವ ಹಿಲ್ತಾ ಥಾ, ಭಯಭೀತ ಹೋತಾ ಥಾ ಉಸ್ಕೆ ಗರ್ಜನಾ ಸೆ, ವೋ ಧನುಷ್ಯ ಭೀ ವೋ ಪಕಡ್ ನಹೀ ಪಾಯಾ, ಉಸ್ಕೆ ರೋಮ್ ರೋಮ್ ಭೀ ವ್ಯಾಕುಲ್ ಹೋ ಗಯೆ, ಅಗ್ನಿ ಪೈದಾ ಹೋ ಗಯಿ ಉನ್ಕೆ ಅಂದರ್, ಜಲನ್ ಹೋನೆ ಲಗಿ, ಔರ್ ಹಾಥ್ ಸೆ ಕಹತೆ ಮೇರೆ ಹಾಥ್ ಸೆ ಫಿಸಲ್ ರಹಾ ಹೈ ವೋ ಅಭೀ, ಪಕಡ್ ನಹೀ ಪಾ ರಹಾ ಹೂಂ, ಔರ್ ಕಹತೆ ಮುಜೆ ಯುದ್ಧ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಮೈ ಭಿಕ್ಷಾ ಮಾಂಗೂಂಗಾ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಬನ್ಕರ್ ಹಾಥ್ ಮೇ ಪಾತ್ರ ಲೇಕರ್ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ಅಕೇಲೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಮಾಂಗೂಂಗಾ, ಫಲ್ ಪೌದೆ ಪರ್ ರಹೂಂಗಾ, ಲೇಕಿನ್ ಇನ್ಕೋ ಸಬ್ಕೋ ಮಾರ್ ಕರ್ ಮೈ ರಾಜಾ ನಹೀ ಬನ್ನಾ ಚಾಹತಾ. ಐಸೆ ವೋ 6 ಕಾರಣ ದೇತೆ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಉನ್ಕಾ ಯೇ ಥಾ ಕಿ मैं मेरे रिश्तेदारों को, गुरुजनों को नहीं मार सकता। पहला अध्याय पढ़ेंगे हम, केवल अर्जुन ही बोल रहे हैं मैं इसके लिए युद्ध नहीं करूंगा। अरे मैं युद्ध में उनको मारूंगा तो उनको पत्नियां विधवा हो जाएगी, उनकी पत्नी विधवा हो जाएगी तो फिर बाकी लोग उनका दुरुपयोग करेंगे, फिर वो क्या कहते हैं इसको, संतान ऐसी पैदा होगी जो क्या कहते हैं उसको, फॉलन फॉलन काइंड ऑफ प्रोजनी, ऐसी संतान निर्माण होगी, वर्ण संकर होगा, ऐसे शब्द यूज़ किया उन्होंने। मतलब क्षत्रियों की पत्नियों को शूद्रों के पुरुष भी यूज़ करेंगे, इस प्रकार से वर्ण संकर होगा और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, समाज भ्रष्ट हो जाएगा और प्रपितामहों को मारकर मुझे पाप लगेगा, और बहुत सारे कारण बताए उन्होंने। फाइनली सारे कारण बताने के बाद भी वो थक गए और उनको फिर भी लगा नहीं कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। मतलब अपनी तरफ से बता रहे हैं, अपना शास्त्र का ज्ञान बखान कर रहे हैं उधर, लेकिन फिर भी निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं थे, वो कमज़ोर हो गए मन। और एक समय पर आकर कहते हैं, शिष्यस्ते हम स्यादि माम त्वाम प्रपन्नम, मतलब अभी मैं, मेरा दिमाग खराब हो गया अभी, हाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, अब माई माइंड इज़ फिनिश्ड, मेरा अभी दिमाग काम नहीं करेगा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मेरी विचार शक्ति समाप्त हो गई है, अब मैं कुछ सोचने के काबिल भी नहीं रह गया, युद्ध तो करना छोड़ ही दो, मेरा मन ही सुन्न हो गया अभी। अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि दोस्ती वोस्ती अभी ख़त्म, आप मेरे मित्र हैं, सखा है, चचेरे भाई है, सब कुछ सही है, लेकिन अब मैं आपका शिष्य बनता हूँ और आप मेरे गुरु बनो। अभी बस दोस्ती का रिश्ता जो है, अभी चर्चा जो है समाप्त हो गई, अभी आप गुरु बनो, मैं शिष्य बनता हूँ, मुझे उपदेश करो मुझे क्या करना है। तो क्या कहते हैं पहले भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, तुम बड़े कृपण हो गए हो विचारधारा में अपने, यू आर वेरी माइजरली इन योर थॉट्स ओनली, और जो जिस पर दुख नहीं करना चाहिए उस पर दुख कर रहे हो। गतासून गतासुमश्च नानुशोचन्ति पंडिता, पंडित का तो बड़ा क्या कहते हैं उसको रोल ले रहे हो कि पंडित हो, इतना मैं शास्त्र से कारण बता रहा हूँ क्यों नहीं युद्ध करना है, पंडित तो बन रहे हो हाँ, लेकिन पंडित जो है होते हुए भी गता अगता, तो जीवित है और मृत होने वाले हैं, उनके लिए आप शोक कर रहे हो, ये पंडितों का लक्षण नहीं है। पंडित लोग तो ना जीवित पर शोक करते हैं ना मृत पर शोक करते हैं, उसे पंडित कहा जाता है। तो आप मन के दुर्बल हो, मन के कंजूस बन गए हो विचारों के, और पंडित का बहाना कर रहे हो, लेकिन आपके विचार जो है वो बहुत ही घिलौने हैं। अभी विशेष बात यह है कि जब तक अर्जुन बोल रहे हैं तब तक भगवान शांत हैं। देखो आप पढ़िए आप गीता को, पहले अध्याय में विषाद व्यक्त कर रहे हैं, तीन व्यक्ति विषाद व्यक्त कर रहे हैं, एक धृतराष्ट्र, अरे बाप रे मेरे मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, मामका पांडवाश्चैव, मामका मतलब मेरे और पांडवाश्चैव, वो अलग, वो मेरे नहीं, अलग है, वो पहले से ही डिविजन कर लिया उन्होंने मन से ही, मन भेद है ना पूरा। फिर दुर्योधन की चिंता है इसके अंदर, द्रोण जी बताइए वो सेना में कौन कौन है, कौन नेतृत्व कर रहे हैं उनकी सेना का, और एक अर्जुन विषाद कर रहे हैं, ऐसे है वैसे है, मैं नहीं करना चाहता, बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं। तब तक भगवान नहीं बोलते हैं, जब तक हमारा प्याला खाली नहीं होता है तब तक भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। जब तक आपको लगता है कुछ आपको पता है, भगवान शांत रहेंगे, आप अपना प्याला खाली करेंगे, बोलेंगे अभी मेरे पास कुछ नहीं है, अभी आप बोलो, तो फिर बोलना शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम भगवान के चरणों में नतमस्तक नहीं होते हैं तब तक भगवान का दिव्य उपदेश हमारे तक पहुंचता नहीं है। टिल द टाइम यू थिंक आई नो, गॉड विल नॉट लेट यू नो मोर देन दैट। जब आप कहते हो मुझे पता नहीं है, बताओ, तभी बता देंगे आपको। जरूरत के बिना भगवान भी आपको कुछ देंगे नहीं, याद रखना इस बात का। व्हेन देयर इज नीड देन ही गिव्स, व्हेन देयर इज नीड फेल्ट बाय यू तभी वो देंगे आपको, क्योंकि वो योग्य स्थिति होती ना। जब जरूरत नहीं है, किसी का पेट भरा हुआ है, आपको जलेबी दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे नहीं भाई अभी मूड नहीं खाने का, अभी कल भूख लगेगी तो सब खाएंगे, तो भूख लगना जरूरी है, तभी अन्न का पचन भी होता है, अन्न में आनंद भी आता है, अन्न का उपयोग शरीर को बल देने को भी हो जाता है। तो ये पहला लेसन है। उसके बाद में भगवान बोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान क्या कहते, देखिए आप गीता का 18 अध्याय है, गीता में 700 श्लोक है। शुरुआत कहाँ से हो रही है, एक विश्व का सबसे महान योद्धा, सबसे बलवान चैंपियन, जिसकी धनुष के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, इंद्र भी खड़ा नहीं सकता, शंकर भगवान से भी तुल्य बल युद्ध किया है उन्होंने, ऐसे योद्धा जो है मतलब वो विजयी है हमेशा, कभी परास्त नहीं हुआ है आज तक। एक बार तो अकेले विराट युद्ध में सभी महारथियों को, कौरवों के महारथियों को एक साथ परास्त किया उन्होंने, जब विराटों की गायों का हरण किया गया था कर्ण के द्वारा और दुर्योधन के द्वारा। ऐसे योद्धा खड़े हैं जिसकी विजय निश्चित है, साथ में कृष्ण है, लेकिन वो मन से हतबल हो जाता है। मन ही उसका, देखो आपके शरीर में शक्ति कब तक होती है, जब तक आपका मन चुस्त है। एक बार मन हार गया तो पहलवान भी कुछ काम का नहीं है, है ना। अगर समझो बंदर कोई सामने से आ गया और कोई एक 80 किलो का वजनदार पहलवान जो वर्जिश करता है, डर गया समझो वो बंदर से, तो उसके 80 किलो का मसल का कुछ फायदा नहीं है। और अगर 4 फुट का बच्चा है और वो बंदर का हेड करेगा तो बंदर हार जाएगा, तो बंदर डर जाएगा उससे। तो शक्ति कहाँ होती है, मन में होती है। मन सही है तो पतला आदमी भी शक्तिशाली है, इसके हिम्मत है, विश्वास है, जिगर है, वो छोटा होने पर भी वो विजयी होता है। तो ये इसका मन ही हार जाता है, हमारे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन। मेंटल डिप्रेशन आएगा ना तो सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा शक्तिमान, सबसे बड़ा विद्यावान, ऐश्वर्यवान जीरो हो जाता है। तो ये जीरो हो गए अभी, जिनको भगवान ने सारथी बनाकर अपना रथी बना लिया है, महारथी बना लिया है, वो जीरो हो गए। तो भगवान गुरु बनते हैं और 700 श्लोक बोलते हैं। ये हमने जो साइकोलॉजिकल का, साइकोलॉजी काउंसलिंग किया है ना, वही साइकोलॉजी काउंसलिंग है, ये साइकोथेरेपी है, ये एक प्रकार की, जो डिप्रेस्ड व्यक्ति को डिप्रेशन से हटाकर दोबारा खड़ा कर देते हैं युद्ध जीतने के लिए। हाँ, माम अनुस्मरच युद्धच, जो बैठा हुआ है शस्त्र छोड़कर, हाथ से गिर गया है, हाथ पांव जल रहे हैं उसके विषाद से, दुख से, उसको भगवान ने खड़ा किया और युद्ध जिताया उससे, तो कहां से कहां पहुंचाया। और ये आपको पता नहीं होगा शायद, केवल 45 मिनट का संवाद है ये, भगवान ने 45 मिनट्स के अंदर 700 श्लोक बोले हैं, क्योंकि समय नहीं था उधर ना, 2 दिन के लिए बोलने के लिए, सब लोग खड़े होते युद्ध करने के लिए, वो शंख बजाने के लिए तैयार है उधर। तो 700 श्लोक में अर्जुन को बैठा हुआ खड़ा कर दिया उन्होंने। तो कुतूहल है ना हमारे लिए कि क्या ऐसा बोला क्या उन्होंने बीच में, इतने बड़े योद्धा को जब डिप्रेशन आता है तो ऐसा क्या बात किया उन्होंने जो वापस खड़े हो गए, और वो भी परिवर्तित हृदय से खड़े हो गए, है ना। इज नॉट लाइक बिफोर, वो जो पहले बोल रहे थे वो सब उन्होंने निगेट कर दिया, जीरो कर दिया, और पूरा भगवान का विचार लिया और पूरे एक नए स्तर पर वो खड़े हो गए, दिव्य स्तर पर खड़े हो गए। पहले अपने स्तर पर थे, शरीर के स्तर पर थे, भावनाओं के स्तर पर थे, मन के स्तर पर थे, परिवार के स्तर पर थे, आसक्ति में थे, वो सबसे हटकर वो एक दिव्य स्तर पर आ गए और उस स्तर पर खड़े होकर युद्ध किया। और एंड क्या है उसका, देखो शुरुआत का श्लोक क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हाँ क्या आगे बताइए, समवेतायुत्सवा मामका पांडवा शैव किम अकुर्वत संजय। और एंड का श्लोक क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र तत्र श्रीर्विजय नीतिर्मम तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मम। ये एंड है, शुरुआत का श्लोक धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, एंड का श्लोक कौन बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं। क्या कंक्लूजन है उसका, एंड का, अभी अर्जुन खड़े हो गए हैं और संजय का कंक्लूजन है कि जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण खड़े हैं और जहाँ पर उनके साथ अर्जुन खड़े हैं, वहाँ पर श्री यानी धन, श्री नीति यानी मोरालिटी और विजय निश्चित है। ये अर्जुन का, ये संजय का कंक्लूजन है, वो अपने मास्टर को बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, महाराज जी ये समझ लीजिए आप, जब तक ये जोड़ी खड़ी है ना इसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। ये पहले ही बता दिया उन्होंने कि युद्ध का नतीजा क्या होने वाला है, जिस प्रकार से संवाद हुआ है, जिस प्रकार से ज्ञान दिया गया है, जिस प्रकार से जोड़ी खड़ी है, एक गुरु बनकर शिष्य बनकर दोनों खड़े हैं, ये जो कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है, कोई भी अधर्म कोई भी पाप इसके सामने खड़ा रह सकता नहीं है, यही संदेश दे दिया उन्होंने। तो ये इसके बीच में क्या हुआ ना, बहुत रोचक कहानी है ये, क्या भगवान ने कहा उनको, तो वो 18 अध्याय में विभाजित है। पहले 6 अध्याय में आत्मा के विषय में ज्ञान दिया है, अधिकतर 2nd चैप्टर में आत्मा के विषय में ज्ञान, सबसे पहला ज्ञान उन्होंने दिया है, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आप आत्मा हैं, सच्चिदानंद आत्मा है और भगवान का अंश हैं आप, और आपका उनका प्रेम का संबंध है। ये सबसे बड़ा मूलभूत ABCD ज्ञान है। फिर वो कर्मयोग के बारे में बताते हैं। और पहले 6 अध्याय जो है अनेक प्रकार के कर्मयोग, कर्म धर्म संन्यास योग, कर्मयोग किस प्रकार से करना है, कर्म से मुक्त कैसे होना है, ये पहले 6 अध्याय में बताते हैं। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में वो भक्ति के बारे में बताते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको एक एक अध्याय में क्या क्या बताएं। ग्रॉसली 3 भाग है, 6 6 6। पहले 6 में आत्मा कर्म, दूसरे 6 में भक्ति और तीसरे 6 में ज्ञान योग। पूरा ज्ञान का, अलग अलग प्रकार का ज्ञान का वर्णन दिया है। अभी आप वन बाय वन जाएंगे। पहले में अर्जुन ने दुख प्रकट किया है, दूसरे में भगवत गीता की पूरी समरी है। अगर आपको समय बहुत कम है तो आप दूसरे अध्याय पढ़कर पूरी गीता को जान सकते हैं। तीसरा अध्याय कर्मयोग है। 4वां अध्याय कृष्ण के विषय में दिव्य ज्ञान का वर्णन दिया है। 5वां अध्याय में भगवत चेतना में कैसे कर्म करना है, पहले बताया कर्म क्या है की व्याख्या की है। उसके बाद में भगवान के लिए भगवत चेतना में कैसे कर्म करना है उसका वर्णन किया है। उसके बाद में 6 अध्याय में ध्यान योग का वर्णन किया है। और अर्जुन इस योग, इस 6 योग में, 6 अध्याय में जो दुनियादारी का ज्ञान है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। भगवान से सुनकर दुनिया के विषय में जो भौतिक ज्ञान है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। 7वें में भगवान के विषय में ज्ञान दिया है, परम सत्य के विषय में ज्ञान दिया है। 8वें में कैसे भौतिक दुनिया दुख से भरी हुई है और कैसे आध्यात्मिक दुनिया आनंद से भरी हुई है इसका वर्णन किया गया है। इसी श्लोक में कहा गया है, इसी अध्याय में वो श्लोक है, अंतकाले चमामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। उसके बाद 9वां अध्याय जो है, अभी भगवत गीता में भक्ति का जो शुरू हुआ विषय, इसमें प्रधान वर्णन किया राजविद्या, राजविद्या राजगुह्यम इदमम परमोत्तमम, ये शुरुआत है उसकी। 10वें अध्याय में कृष्ण का ऐश्वर्यपूर्ण वर्णन किया गया है, मतलब कृष्ण ही बोल रहे हैं मेरे ही बारे में, मतलब वही बोल रहे हैं और वो अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, अपनी शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाते हो। 12वें अध्याय में डायरेक्टली भक्ति के विषय में चर्चा किया है। 13वें अध्याय में बहुत सुंदर विषय है, प्रकृति, प्रकृति के भोक्ता और दिव्य चेतना, इसके बारे में वर्णन किया है। 14वें अध्याय में डायरेक्टली 3 गुण के बारे में चर्चा किया है, त्रिगुण योग है वो, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में ज्ञान 3 गुणों का, कर्म 3 गुणों का, दान 3 गुणों का, हर चीज 3 गुणों में बताई गई है, मन 3 गुणों का। वो कथा शुरू होने के पहले उसको साइलेंट करना चाहिए, क्योंकि वो आजकल के कलयुग के अंदर सबसे बड़ा जो व्यवधान है आयुष में, हमारे हमारे गोल के बीच में, वो मोबाइल है। तो मैं कह रहा था कि त्रिगुण योग 14वां अध्याय में बताया गया है। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग, श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान दिया है। और हम लोग बचपन में इन दोनों को, 2, 12 और 15 को याद करते थे स्कूल में, हमारे वो प्रतिस्पर्धाएँ होती थी और सब लोग 12वां 15वां अध्याय जाके स्टेज पर बोलते थे। 16वें अध्याय में 2 चीज़ों का जो डिस्कशन किया है, दिव्य और राक्षसी, ये क्या है और उसका पूरा वर्णन दिया है। एक दिव्यता का वर्णन दिया है और एक राक्षसी प्रवृत्ति का वर्णन दिया है, व्हाट इज डिमोनियक एंड व्हाट इज डिवाइन, इसके बारे में चर्चा किया है। 17वें अध्याय में डिविजन्स ऑफ फेथ, यानी श्रद्धा के जो विभाग है हमारे, कहाँ कहाँ श्रद्धा हमारी बटी हुई है, परिवार में, पैसे में, ऐश्वर्य में, अधिकार में, प्रभाव में, बहुत सारे चीज़ें हैं उसमें, उसका वर्णन किया। और 18वें अध्याय में वैराग्य का परफेक्शन, परिपूर्णता का वर्णन किया है। और वो समरी भी है पूरी गीता की, दोबारा दी गई है, हर एक अध्याय के विषय में 4-4, 5-5 श्लोक करके 18वें अध्याय में कंक्लूजन दिया है। और उसमें एक विशिष्ट चीज़ हमको देखती है, एक जगह वो शुरुआत में कह रहे हैं 2nd अध्याय में, शिष्यस्ते हम स्यादि मामतम प्रपन्नम, शरणागत हो गए प्रपन्न, मनी शरणागति स्वीकार कर ली भगवान से। और 18वें अध्याय में वो एक जगह कह रहे हैं 68 श्लोक में, क्या कह रहे हैं, नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा, और आगे कहते हैं कि जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, करिष्ये वचनम तव। पहले कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी कह रहे हैं मेरा ज्ञान वापस लौट के आया है, जो भ्रम में मैं था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो सही हो गई है, मुझे पुनः ज्ञान प्राप्त हो गया, वो भी सही ज्ञान प्राप्त हो गया है साक्षात्कार के साथ, नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन, आई हैव गॉट नॉलेज जो मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ, विज्ञान में उसका रूपांतर कर सकता हूँ। और कैसे करूँगा, करिष्ये वचनम तव, जैसे आप कहेंगे वैसे करूँगा, अगर हमको सबको जीवन में अगर समझना है कि हमको गीता समझी कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल, वो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं खुद को एक बैरोमीटर देता हूँ, हाँ, एक मापदंड देता हूँ। वो मापदंड ये है, अगर आपको जीवन में कभी लगता है कि करिष्ये वचनम तव, हे भगवान अभी मैं केवल आपकी आज्ञा से चलूंगा, इसका मतलब आपको गीता समझ में आई। क्योंकि तो अर्जुन को समझ में आया इसका प्रूफ क्या था? पहले कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ये रीजन है, वो रीजन है। बाद में बोलते कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बोलो। पूरा सुन लेते हैं, बीच में प्रश्न पूछते हैं, फिर उत्तर सुनते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, फिर भी फूट प्रश्न करते हैं। और सारा उहापोह, उहापोह का मतलब क्या है? डिस्कशन, बैक एंड फोर्थ टू अंडरस्टैंड द मैटर। सब समझने के लिए कंक्लूजन क्या है? आप जो कहेंगे वो करूंगा। गीता समझनी कैसी है? जैसे अर्जुन ने समझी है वैसे समझना है। देर इज नो अदर वे, हाँ, देर इज नो अदर फिलोसॉफिकल वे। द वे दिस फिलोसोफर अंडरस्टूड, इसी इस तत्वज्ञानी ने क्या बताया है, उसने क्या लिखा है, उसने इस पर किताब लिखा है, भाष्य किया है, उसका क्या विचार है? नो यूज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अंडरस्टैंड भगवद गीता द वे अर्जुन अंडरस्टूड। और कोई रास्ता नहीं है। जिन्होंने जिसके लिए बताया है, उसने जो समझा है वही हमारा स्टैंडर्ड है। अगर वो पूरा नहीं होता उनका स्टैंडर्ड, तो भगवान ही कहते रुक जा बेटा, और मुझे कुछ बताना है आपको, आपको पूरा समझ में नहीं आया है। लेकिन भगवान ने कहा उनको कि हे अर्जुन, जो भी आपको बताना था वो मैं आपको सब बता चुका हूँ। जो भी जितने भी रास्ते हैं सब मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको वो समझ में नहीं आया हो तो दोबारा पूछ लो, दोबारा समझाऊंगा। और अगर समझ गया है तो इसके आगे और कुछ आपके लिए बताने लायक नहीं है। मतलब भगवान ने अपनी तरफ से फुल स्टॉप दे दिया उनको। अर्जुन ने नॉड किया, यस सर, आई हैव अंडरस्टूड। उसके बाद भगवान ने कुछ बोला नहीं। इसका मतलब भगवद गीता इज एंड ऑफ नॉलेज, इज नथिंग बियॉन्ड दैट। अगर फिलोसॉफी, दर्शन, तत्व ज्ञान के बारे में चर्चा करनी है तो फिलोसॉफी के लिए भगवद गीता इज द अल्टीमेट। बाकी शास्त्र जो अलग धर्मों के हैं वो अपरिपूर्ण क्यों है? क्योंकि उसके बाद एक जगह पर तो बताने वालों के मारने को भागे, दूसरे जगह पर जिसने बताया उसको ही चढ़ा दिया क्रॉस पर। तो ये ज्ञान का लक्षण नहीं है कि जो बता रहा है उसको ही खून कर रहे हैं आप। एक तो भाग गए बेचारे अपने जान को बचाने के लिए, एक बेचारे तो चढ़ गए क्रॉस के ऊपर। लेकिन आपने गीता के बाद में सुना है कैसे कि अर्जुन बाण लेकर अर्जुन कृष्ण के पीछे पड़े और कृष्ण भाग रहे हैं उनके बाण के तनत्कार सुन के? नहीं, ये परफेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज हो गया है। ज्ञान का आदान प्रदान परिपूर्णता से हुआ है। उन्होंने उनका पूर्ण शिष्यत्व स्वीकार किया है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, और जीवन भर उस कम से कम उस युद्ध में पूरी तरह से उनकी आज्ञा पे चलने का उन्होंने निर्णय लिया है। और वो निर्णय आखिर तक माना है। भले बीच में बहुत प्रश्न किए, अरे ये कर्णों को क्यों मारना है, अरे इनको क्यों मारना है, भीष्मदेव को कैसे मारे, नहीं मार सकते, मर जाएंगे हम, लेकिन उनको नहीं मारेंगे। फिर गुरु द्रोण को तो हमारे गुरु है, नहीं मारेंगे। लेकिन बाद में जो जो कृष्ण ने कहा उसको उन्होंने स्वीकार किया। तो ऐसा नहीं कि हम प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं प्रश्न, लेकिन प्रश्न पूछने के बाद भी आपको फॉलो करना है जो भगवान बता रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है। यू कैन आर्ग्यू, यू कैन क्वेश्चन, यू हैव राइट टू क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। लेकिन उत्तर मिलने के बाद में उत्तर को फॉलो करना है। अपने विचारधाराओं को बाजू में रखे, भगवान की विचारधाराओं को अपनी विचारधारा बनाकर आगे चलना है। उसका मतलब है करिष्ये वचनम तव। करिष्ये वचनम तव का मतलब विचारधारा आपकी अलग हो सकती है, लेकिन कार्य आपका उसी दिशा में होगा जिस दिशा में कृष्ण आपको बता रहे हैं। यही भगवद गीता की रियल मजा तो यही है। अर्जुन ने भगवद गीता सुनने के बाद में पूरे 18 दिन क्या किया, ये भी एक संशोधन का विषय है, ये भी एक बहुत ही ज्ञान का विषय है कि अर्जुन की भी ये ज्ञान सुनने के बाद में उसको अमल करने में क्या क्या इवोल्यूशन हो गया उसका, किस तरह से वो इवॉल्व हो गए, किस तरह से उनकी प्रगति हो गई, चेतना की वृद्धि कैसे हो गई, और कैसे उन्होंने युद्ध जीता। संघर्ष बहुत हुआ इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी उसको उतारने में, और भगवान को बार बार बीच बीच आके उनको समझाना पड़ा कि ये ऐसे ऐसे है इसलिए आपको ऐसे ऐसे करना है, भले वो दुनिया के नियम से विरुद्ध होगा, अनुकूल नहीं होगा, आपकी कीर्ति होगी कि आपने किसी को निहत्ता मारा, ये सब होगा, आपको कीर्ति होगी आपकी, लेकिन करना आपको वही है जो धर्म के लिए अनुकूल है। धर्म के ऊपर कोई भी नहीं है, आपका परिवार नहीं है, आपके पत्नी का अपमान धर्म के ऊपर नहीं है, आपने जो वचन लिया है उसके बदले के लिए वो धर्म के ऊपर नहीं है, आपके भाई ने उसके दुशासन की छाती फोड़ने का वचन लिया है और आपने कुछ वचन लिए हैं, कुछ किसके आपका हिसाब किताब है और किसी का द्वेष का हिसाब किताब है, ये सब धर्म के पीछे सामने कुछ नहीं है, सबके ऊपर धर्म है। और धर्म जो है वो मैं बताता हूं वो धर्म है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये समझना बहुत जरूरी है। तब अर्जुन को समझ में आया कि जो भगवान बता रहे हैं उनके सामने मेरी प्रतिज्ञा तुच्छ है, मेरे भाई की प्रतिज्ञा भी तुच्छ है, वो सब सेल्फिश मैटर्स हैं, हमारे खुद के हिसाब किताब है वो। भगवान ने कहा बाजू में रखो उसको, विश्व का कल्याण करना है तो आपको इस सबके ऊपर उठना होगा, अपने पारिवारिक आसक्ति से ऊपर उठना होगा, और आपकी सारी इच्छाएं भी पूर्ण होगी जब इसके आप ऊपर उठेंगे, उसमें फंसे रहेंगे तो खुद के लिए कार्य करते रहेंगे। तो वो अर्जुन जो पहले खुद के लिए युद्ध करने वाला था, खुद की क्या इच्छा है, खुद का कहाँ कहाँ अपमान हुआ है, उसका बदला लेना है, और खुद का कुछ एजेंडा है उसके लिए वो युद्ध कर रहे हैं। बाद में उन्होंने किसके लिए युद्ध किया, खुद के लिए युद्ध नहीं किया, केवल भगवान के लिए युद्ध किया, भगवान को संतुष्ट करने के लिए युद्ध किया। ये चेतना का परिवर्तन है, ये समझना बहुत जरूरी है। भगवद गीता पढ़ने के बाद में अगर चेतना में परिवर्तन नहीं होता है तो भगवद गीता पढ़ना बिल्कुल बेकार है। भगवान ने जो किया अर्जुन के ऊपर, भगवान ने जो अर्जुन के ऊपर परिवर्तन किया वो हमारे अंदर नहीं होता है। हम अगर अर्जुन जैसे नहीं बदलते हैं तो हमारा भगवद गीता का नॉलेज केवल इट्स लाइक अ पैरेट, यू कैन गो ऑन रिसाइटिंग, पीपल विल गेट इम्प्रेस्ड, कितना बढ़िया गाते हैं, कितना बढ़िया समझाते हैं, लेकिन जब तक आपके जीवन में उसका परिवर्तन नहीं होता है तब तक वो भगवद गीता का नॉलेज भी आपके लिए वेस्ट है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विश्व भर में ऐसे बहुत साइंटिस्ट लोग हैं, ऐसे बहुत नोबल लॉरेट्स हैं जिन्होंने भगवद्गीता पर पीएचडी किए हैं, और भगवद्गीता की सैद्धांतिक चर्चा में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, ऐसे विद्वान है वो, संस्कृत के पंडित भी, विदेशी लोग, लेकिन वो कृष्ण पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए आप, भगवद्गीता के ऊपर पीएचडी किया है उन्होंने, जैसे हमारे हिंदी में कहते हैं लोकल, बाल की खाल निकाल लिया उन्होंने, इतना भगवद्गीता पढ़ा है बैक टू बैक, लेकिन कृष्ण परम भगवान है इस पर उनको विश्वास नहीं। तो ऐसे प्रकार से गीता पढ़ना बिल्कुल यूजलेस मैटर है, इंटेलेक्चुअल जगलरी है वो पूरा। बुद्धि में आप बहुत प्रगल्भ हो सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके हमारे आत्मा जो है, आत्मा जो है वो प्रगत है। आत्मा और बुद्धि ये दो अलग विषय हैं, आत्मा और मन ये अलग विषय हैं, आत्मा और शरीर ये टोटल डिफरेंट विषय है। आत्मा दिव्य है, शरीर भौतिक है, उसमें दिखने वाला शरीर भी भौतिक है, नहीं दिखता है वो मन भी भौतिक है, नहीं दिखता है वो बुद्धि सूक्ष्म है वो भी भौतिक है, अहम भी भौतिक है, सब भौतिक है, इट्स ऑल मटीरियल। ओनली स्पिरिचुअल इज आत्मा, और भगवद गीता से आत्मा का परिवर्तन अपेक्षित है, शरीर का मन का बुद्धि का परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। वो भी हो सकता है लेकिन वो प्राइम गोल नहीं है, भगवदगीता का प्राइम गोल है आत्मा का परिवर्तन। और जिस प्रकार से अर्जुन ने वो आत्मा का परिवर्तन कराया किया, और वो परिवर्तित आत्मा के साथ जो आगे किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि तो उसकी जर्नी जो है ना वो भगवदगीता सुनने के बाद शुरू हुई, और महाभारत की उसकी पूरी वो एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ भगवदगीता वो महाभारत के युद्ध में आपको दिखाई पड़ेगी। और कैसा प्रसंग है वो, नॉलेज कहाँ अप्लाई करना है, जहां पर दिन दहाड़े युद्ध चल रहा है रोज, हाँ, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, रोज शंख बज रहे हैं, लोग गदा बज रहे हैं, वो धनुष बज रहे हैं, गर्जना हो रही है, हाथी चिल्ला रहे, योद्धा चिल्ला रहे, घोड़े चिल्ला रहे, मर रहे, हाथ पांव टूट रहे, जहां पर कीचड़ फैला हुआ है हाथ पांव और मैल का मांस का, ऐसी जगह पर उसको अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि सभा बैठे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, वहां पर अप्लाई करना है तो आसान हो गया ना, शांति से बैठे, कुछ हिंसा नहीं हो रही है वहां पर, कोई मौत नहीं आ रही वहां पर, लेकिन जहां पर दिन दहाड़े करोड़ों लोगों की मौत हो रही है, ऐसे अति उत्कट अति तीव्र प्रसंग में उनको सबसे पहले से ही अमल करना है उस ज्ञान का, और वो किस प्रकार से किया ये सब महाभारत में आता है। इसलिए भगवद गीता का ज्ञान और उसके बाद अर्जुन ने किया क्या 18 दिनों में, ये साथ में पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जीवन के किसी भी संघर्षमय स्थिति में हम भगवद गीता का ज्ञान उतार सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। दिव्य जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो भगवद गीता के तत्व ज्ञान के आधार पर सुलझा नहीं सकते हम लोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऐसा शास्त्र है कि आप जीवन के किसी भी अवस्था में होंगे, या आपका परिवार दुखी होगा, या कोई डिवोर्स होगा होगा, या धन का नुकसान हो गया होगा, या आप अभी यश नहीं मिला होगा आपकी परीक्षा में कहीं, या बिजनेस में आप फेल होंगे, या आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, या आपकी बहुत कीर्ति हो रही है, दोनों प्रकार की स्थितियों में आप होंगे, द्वंद्व में कहीं भी होंगे, ड्युअलिटी में आपको ये ज्ञान हेल्प करेगा। और जब भी आप ऐसे दुविधा में आएंगे ना, टू डू और नॉट डू, है ना, करूं कि नहीं करूं, करना भी लगता है सही है, नहीं करना भी लगता है सही है, क्या करूं, वैसे बाकी प्रसंग में आपको गीता का नॉलेज बराबर से याद आएगा। क्योंकि गीता एक परम सत्य को हमारे सामने प्रकाशित करता है कि भगवान इस तत्व के सामने और कोई तत्व ऊंचा नहीं है, देयर इज नथिंग हायर ट्रूथ देन लॉर्ड। तो इसलिए सारा हमारा जो प्रश्न है ना, हम उस स्तर पे उसको जांचते हैं। अगर मन के स्तर पे जांचेंगे तो मन के स्तर पे आपको उत्तर मिलेगा, बुद्धि के स्तर पर ना जांचेंगे तो बुद्धि के स्तर पर उत्तर मिलेगा, और आत्मा के और परमात्मा के स्तर पर जांचेंगे तो दिव्य उत्तर मिलेगा। और सारा चर्चा यहां पर जो दिव्य दिव्य स्तर पर ही हुआ है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कृष्ण अर्जुन को आत्मा के लेवल पर लेके आते हैं और वहां से उनकी चर्चा होती है, मतलब पहले स्टैंडर्ड से उसको दसवीं स्टैंडर्ड में लेके आते हैं और वहां से उनका अभ्यास शुरू हो जाता है। तो फोरमोस्ट क्राइटेरिया, सबसे सर्वोच्च जो योग्यता है हमारी गीता को समझने के लिए, वो ये है कि हम आध्यात्मिक स्तर पर आए, मन के बुद्धि के अहम के स्तर से उठकर आध्यात्मिक स्तर पर आए। और वो कैसे आए, जब तक परमात्मा दिव्य परम पुरुष के साथ में हमारा संबंध नहीं होता है तब तक हम दिव्य स्तर पर नहीं आते हैं। जब दिव्य स्तर पर जो व्यक्ति है उसका संबंध हो गया हमारा, तो हम दिव्य स्तर पर जा सकते हैं। कोई मन की स्थिति पे है, भावनिक स्थिति में है, उनके संपर्क करेंगे तो भावनिक स्थिति में आ सकते हैं। इफ़ यू आर इमोशनल आई मीट यू, आई कैन ऑल्सो बिकम इमोशनल। अगर आप बहुत बुद्धिवादी हैं और आप बहुत तर्क और फिलोसॉफिकल डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन उसके परे उठकर अगर दिव्य स्तर पर पहुँचना है तो वो परमात्मा को संबंध करना पड़ेगा आपको। और फिर वो बताते हैं परमात्मा का संबंध अगर प्रत्यक्ष नहीं होता है तो तद्विद्धि प्रणिपते न परिप्रश्न न सेवया, आपको गुरु स्वीकार करना होगा। अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, जो उनके गुरु स्वयं बने हुए हैं, वो बता रहे हैं तद्विद्धि प्रणिपते न, आपको शरणागति स्वीकार करके गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा। तब तक कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मैं दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुका हूँ। हाँ, तद्विद्धि प्रणिपते न परिप्रश्न ने सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, क्योंकि वो परम ज्ञानी पुरुष जिसकी आप शरणागति स्वीकार करते हो उसके वजह से आपको वो ज्ञान का दर्शन होगा जो वो दे रहे हैं आपको। और वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ज्ञान है जो अमल करने योग्य है, साक्षात्कार के स्तर पर है वो। इट इज़ ऑन द लेवल ऑफ रियलाइजेशन। जब ये क्राइटेरिया पूरी करते हैं तब हम दिव्य स्तर पर आए या आ रहे हैं ऐसा हम क्लेम कर सकते हैं। केवल ना ये भगवद्गीता का ज्ञान पढ़ के कोई भी दिव्यता का क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये शास्त्र भी हमें गुरु के ही गाइडेंस में सीखना है। जैसे अर्जुन ने भगवान को गुरु बनाकर सीखा है, उनका वो परम भाग्य था कि वो उनके गुरु बने, हमारा शायद वो भाग्य नहीं है, लेकिन हमारे लिए गुरु के प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि गुरु बनकर आते हैं, उनकी शरणागति हम स्वीकार करते हैं तो भगवान के द्वारा ही ज्ञान उनके मुख से हमको प्राप्त हो जाता है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। जब तक ये हम मनुष्य जीवन में गुरु स्वीकार नहीं करते हैं तब तक सारा ज्ञान बुद्धि के स्तर पर ही अटका रहता है। वाद विवाद तर्क में, डिस्कशन में, फिलोसॉफिकल चर्चा में ही हम फंसे रहेंगे, कंक्लूजन कुछ निकलेगा नहीं, करना क्या है नहीं समझेगा हमको। मजा आएगा बहुत बुद्धि के स्तर पर कि हमने आज कितने श्लोक डिस्कस किए और कितना उसका डिस्कशन करके उसका निचोड़ निकाला और क्या क्या निकाला, लेकिन करना क्या है और कैसे उसको अप्लाई करना है ये नहीं समझ में आएगा। जब तक करिष्ये वचनम तव, ये बुद्धि हमारी उत्पन्न नहीं होती है, ये मनोधारणा नहीं होती है, तब तक गीता का ध्यान कहीं और स्तर पर आपको स्पर्श कर रहे हैं, जहाँ स्पर्श करना है वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये जो विषय है ये हर एक भारतीय व्यक्ति के लिए गौरव का विषय है। और अगर हम अपने आप को वास्तविक में भाग्यवान मानते हैं, क्यों भगवान मानना चाहिए हमको, क्योंकि हम लोग भारत भूमि में जन्म लिए हुए हैं, भारत भूमि संतों की भूमि है, भारत भूमि भगवान की भूमि है, भारत भूमि भगवान के अनंत अवतारों की भूमि है। आप मुझे भगवान का एक भी अवतार ऐसा बताओ जो भारतवर्ष के बाहर हुआ हो, कोई ऐसा भगवान का अवतार है? एक संत गल्फ में हुए, एक संत जेरूसलम में हुए, उसके बाद कोई संत भी परदेश में नहीं हुआ है। जितने भी धर्म के जितने भी संत हैं वो सब इधर ही हुए हैं। और भगवान के जितने भी अवतार हैं, संभवामी युगे युगे, हर युग में अनंत अवतार लेता हूँ मैं, ऐसे भगवान बोलते हैं, वो सारे भी इधर ही हुए हैं। कुछ उत्तर में हुए, कुछ दक्षिण में हुआ है, कुछ पश्चिम में हुए, कुछ उत्तर में हुए, कुछ मध्य में हुए हैं, कोई एकदम फार नॉर्थ में हुए हैं, लेकिन सारे इधर ही हुए हैं। और ऐसे भूमि में जहाँ पर भगवान के और भगवान के अनंत अवतारों के और भगवान के संतों के चरण स्पर्श हुए हैं, इस भूमि में जन्म लेने के लिए कई जन्म पुण्य करना पड़ता है, जिसके फल स्वरूप हम भारत में जन्म लेते हैं। इसलिए भाग्यवान जीव माना गया है इसको, भाग्यवान जन्म माना गया है। और इस भारत में जन्म लेने के पश्चात ये गीता का परिचय होना और गीता के प्रति आकर्षण होना, रुचि पैदा होना, यह परम भाग्य की बात है। ये एक ही ऐसा शास्त्र है जिसको महाभारत में क्या निहित किया गया है ना, महाभारत में उसको पंचम वेद कहा गया है, और महाभारत में ये सार रूप जो ज्ञान है वो गीता उपनिषद के रूप में आया है, वो उसको उपनिषद कहते हैं। वो सबका सार निचोड़ जो तत्व ज्ञान है वो गीता के रूप में प्रकट हुआ है, और अर्जुन उसके क्या कहते हैं काफ है, काफ क्या कहते हैं उसको, क्या बछड़ा, और भगवद गीता दूध है और भगवान धो रहे हैं उसको, मतलब ही इज मिल्किंग, और अर्जुन उसको स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा वर्णन दिया उसको। तो ये ज्ञान जिसको प्राप्त होता है वो एक परिपूर्ण जीव हो जाता है, और यही ज्ञान पर्याप्त है अगर शरणागति में स्वीकार किया है, गुरु के निर्देश में स्वीकार किया है, गुरु की सेवा करते हुए स्वीकार किया है, तो आपको वो भगवान परम गति भगवान के चरणों तक पहुँचा सकता है, इतनी शक्ति है उसके अंदर। लेकिन कनेक्शन होना चाहिए, केवल पीएचडी करने के लिए इसको पढ़ेंगे तो पीएचडी आपको 10 मिलेगी, बाकी कुछ नहीं होगा। जिस स्तर पर आपको उसको यूज़ करना है, देखो लोगों ने उसको यूज़ किया है अपने के लिए, किसी को अहिंसा के बारे में बताना है तो उसने गीता का यूज़ करके अहिंसा के बारे में चर्चा किया, जहाँ भगवान कह रहे हैं माम अनुस्मर युद्ध च, उठ जा और मेरे लिए युद्ध कर, ऐसे भगवान बोल रहे हैं, उसमें से हमने अहिंसा का मैसेज निकाला, किसी ने दया का मैसेज निकाला, मतलब सब मैसेज उसके अंदर है, लेकिन लोगों ने अपने अपनी विचारधारा के अनुसार उसमें से मैसेज निकाला और वो बेचा अपने किसी उद्देश्य के लिए। लेकिन भगवद गीता यथारूप समझना है तो वो अर्जुन जैसे ही समझना है, और कोई तरीका नहीं उसके लिए। जिस भावना में, जिस मूड में अर्जुन ने इसको अप्रोच किया है, उसी तरह हमको भी अप्रोच करना है, तब जाकर वो जिस प्रकार से अर्जुन ने समझा है वैसे हम समझेंगे, और किसी भी अन्य तरीके से उसको अप्रोच करेंगे तो कुछ और समझेंगे और उसका कुछ अलग ही निचोड़ आपके मन में आएगा। क्योंकि भगवद गीता ना अथाह सागर है ज्ञान का, आप दो श्लोकों के बीच में डुबकी लगा सकते हैं और कुछ अहीं और जा सकते हैं आप, इतना इसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। क्या चाहिए आपको उसके अंदर, आपको कर्मयोग चाहिए, उसका नॉलेज दिया गया, कर्म संन्यास योग चाहिए, ध्यान योग चाहिए, राजयोग चाहिए, भक्ति योग चाहिए, क्या चाहिए आपको, हर प्रकार के योग का वर्णन इसके अंदर दिया है। योगी नाम अपि सर्वेशा मदगति अंतरात्मना, इतने योगों का वर्णन दिया है कि भगवान कहते हैं कि इस सारे योगों से आप मुझे मिल सकते हो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मद भक्ति अंतरात्मना, इन सभी योगियों में जिसका हृदय मेरे पर लटका हुआ है, जिसकी आसक्ति मुझे लगी हुई है, मुझ पर लगी हुई है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। ये कौन कह रहे हैं, इसको बताने वाले ही कह रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि ये सभी मार्गों में से, सब मार्ग अच्छे हैं, मेरे तक ही पहुँचते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे आसान भी एक साथ में कोई मार्ग है तो भक्ति योग का है। इसलिए सारा अच्छे बताने के बाद में 12 विद्या में क्या बता रहे हैं, वो भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्त्वसु तत्वतः, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ वैसे अगर मुझे समझना है तो भक्ति ये एक ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। सो वो ये नहीं कह रहे कि आपको भक्त ही फॉलो करना है, वो नॉलेज दे रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको क्या करना है आपके ऊपर है। बाद में कहते भी है, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अभी तुमको जो करना है तुम कर सकते हो, यहाँ पर वो कहना बंद कर देते हैं। उसके बाद तुरंत अर्जुन बताते हैं, नष्ट मोहो स्मृतिर लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। तो ये सारांश में आपको बता रहा हूँ मैं, गीता बहुत बड़ा विषय है, एक एक अध्याय पर एक एक महीना बात कर सकते हैं, इतने उसमें ज्ञान के मणि भरे हुए हैं। लेकिन सारांश में समझना है, अगर कुछ उसमें रुचि उत्पन्न करनी है, कुछ प्रेरणा उत्पन्न करनी है कि उसको कल उठाकर पढ़ना शुरू करें, इतना अगर रुचि उत्पन्न करनी है तो ये समझना जरूरी है कि जीवन में, सबके जीवन में अर्जुन जैसी विषाद अवस्था निर्माण होती ही है। आप बताइए अपने दिल में और अपने जीवन में झांक कर देखिए कि ऐसी अवस्था सबकी होती है। कुछ लोग अहंकारवश किसी को बताते नहीं हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, और कुछ लोग खुले दिल से किसी चर्चा करते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, लेकिन दुखमय डिप्रेशन लाइक सिचुएशन ये सबके जीवन में आती है। और उस वक्त अगर वो भाग्यवान जीव होगा तो किसी भक्त से मिलेगा, संत से मिलेगा, और भगवद गीता का परिचय होगा, उसको फॉलो करेगा, तो उसका कल्याण ही कल्याण है। मैं कोई दो तीन कहानी बताऊंगा कि लोगों का कैसा परिवर्तन हुआ है। हमारे हरे कृष्ण आंदोलन ने ना दिसंबर महीने में ग्रंथों का वितरण करने का एक एक तरीका है। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर हम लोग सब लोग विश्व भर में भगवद गीता गीता जयंती के उत्सव में पूरा महीने भर हम लोगों को वितरण करते हैं। तो ऐसे विश्व भर में करोड़ों गीताएं बटी हुई है। हाँ, एक दिन एक व्यक्ति बहुत भूखा था, प्रचंड भूखा था, ठीक है, 3 दिन का भूखा था। तो किसी ने उसको एक केला दिया, तो केला वो इतना वो जल्दी में था उस खाने के लिए, मतलब यू कैन इमेजिन, 3 दिन से जिसको खाना नहीं मिला है वो भी केला खा रहा है। तो हम लोग कैसे करते हैं, ऐसा केला खोलते हैं, थोड़ा सा खोलते हैं, पूरा नहीं खोलते ना, थोड़ा खोलते हैं फिर खाते हैं, फिर थोड़ा और खोलते हैं, फिर थोड़ा खाते हैं, ऐसा पूरा एक साथ खोलते नहीं है तो पूरा गिर जाएगा ना वो। तो वो इतना डेस्परेट था, पूरे खोल दिया और वो खाने के पहले आ करने के पहले वो केला कचरे के डिब्बे में गिर गया। वो इतना डेस्परेट था वो कि ही डाइव्ड इन द डस्टबिन, इतना भूखा था बेचारा वो। तो उसको केला कहीं मिला नहीं, ऐसा ऐसा बहुत ढूंढा तो एक किताब मिला उसको, तो किताब बाहर निकाला उसने और वो थी भगवद गीता। उसको उसने आगे जाकर पढ़ा और वो मंदिर में जाकर फुल टाइम डिवोटी बना। एक और कहानी है, एक कबर्ड रिपेयर करने वाला था, एक कहानी मैंने परसों सुनी रविवार के दिन। भगवत गीता की महिमा अगाध है, आपको जीवन भर तक सुनाई पड़ेगी वो नई नई कहानियां। तो उसने कई कबर्ड रिपेयर किए आज तक। एक कबर्ड उसके पास आया रिपेयर करने के लिए, तो उसने खोला उसको, तो उसके अंदर उसको 4 किताबें मिली, उसमें से एक भगवत गीता थी। तो उसने बोला, अरे वो मालिक ने छोड़ के गया होगा, चल कोई बात नहीं मैं निकालता हूँ फिर देता हूँ उनको वापस। तो जब रिपेयर किया कबर्ड तो वो पढ़ने लगा किताब, और पूरी गीता उसने पढ़ डाली, और अभी वो दीक्षा लेने के लिए तैयार है गुरुजी से, पूरा नियम पालन कर रहा है, सब कुछ छोड़ दिया, चाय कॉफ़ी कांदा लहसुन केवल प्रसाद खाता है, नॉन वेज छोड़ दिया है, चाय कॉफ़ी छोड़ दिया है, नशा करना छोड़ दिया है, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र के 2 घंटे जप करता है, और अभी गुरुजी के अनुग्रह के लिए वेट कर रहा है कि मेरी कब दीक्षा होगी मेरी। कबर्ड रिपेयर करते करते, हाँ कबर्ड तो कई रिपेयर किए, इस बार कबर्ड रिपेयर नहीं हुआ, उसका हृदय रिपेयर हो गया। ऐसी अनंत कहानियां हैं, एक भगवत गीता ने लोगों का कैसा उद्धार किया है, इतना लोगों को विश्वास है। कभी कभी हमको शर्म आती है, आपको मैं बताता हूं कहानी ऐसी कि मैं इस मार्ग में क्यों आया, मैं तो डॉक्टर हूं, मेडिकल स्टूडेंट था, और एसएससी में मेरा महाराष्ट्र में बहुत ऊपर रैंक आया था, और मैं हर विषय में फर्स्ट आया था, वो पुराना इतिहास है। तो मेडिकल में पता है ना आपको, मैं साफ बताता हूँ, मेडिकल में जो लोग जाते हैं उनको बहुत गर्व होता है कि आई एम अ स्पेशल क्रीम ऑफ सोसाइटी। लेकिन जब मैं इस्कॉन मंदिर में, जुहू मंदिर में गया ना, एक दिन गया और प्रसाद वगैरह खाया, लंच वगैरह खाया, 2 बजे हमको बोला कि वो ना जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना उनके लिए इस्कॉन में अलग विंग है, भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट, उसमें खाली PhDs और डॉक्टर्स इंजीनियर्स एंड ITs एंड ऑल गाइड्स गो देयर, तो वो उनका लिए अलग अलग प्रवचन होता है। तो हम लोग उधर गया, तो उधर ना एक विदेशी ब्रह्मचारी जो खुद PhD हैं, हाँ वो भगवत गीता का क्लास ले रहे थे, और ऐसे श्लोक बोलते जा रहे हैं एक के बाद उसका अनुवाद के साथ, ऐसे बहुत छंद में, उत्कृष्ट छंद में श्लोक बोल रहे हैं, उसके बाद उसका अनुवाद बता रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, फिर दूसरा श्लोक बता रहे हैं, फिर चर्चा कर रहे हैं। मुझे इतनी शर्म आई वो दिन, इतनी शर्म आई कि मैं जन्म से गौड़ सरस्वत ब्राह्मण हूँ, हाँ मतलब हमारे गाँव में हमारी सबसे उच्च जाति है सरस्वत ब्राह्मण, ऊपर से डॉक्टर हूँ, पढ़ रहा हूँ, और मेरी मुझे एक विदेशी व्यक्ति जो जन्म से क्रिश्चियन है, जिन्होंने ये सब शास्त्र अपना कर पूरे जीवन को समर्पित करके सर्वमुंडवा कर ब्रह्मचारी बन के भारत में आकर अपना जीवन समर्पित कर दिया है, उससे मैं गीता सीख रहा हूँ, जबकि ब्राह्मण होने के नाते मेरा यह धर्म है यजन याजन पठन पाठन, मुझे ये सीख कर लोगों को पढ़ना है और मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो वो शर्म के मारे मैं भक्त बना, इट्स अ गुड थिंग, अ वेरी नाइस थिंग। वो जो संकोच मुझे हुआ वो अच्छा था मेरे जीवन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शर्म तो आई ना कि भारत में जन्म लेकर, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ना एक कण की रुचि है आध्यात्मिक विषय में, हाँ कोई विचार नहीं, रुचि नहीं, बाकी सब चीज़ में इंटरेस्ट है, और एक विदेशी व्यक्ति जिसका जन्म भी बांग्लादेश में हुआ है, क्रिश्चियन धर्म में हुआ है, उसने सब कुछ छोड़कर इस धर्म को अपना कर ऐसे जीवन अपनाया है, ऐसे नहीं भी घर में अपने रहकर शर्ट पैंट पहन के पति पत्नी के साथ रहकर फिर वो पालन कर रहा है, ऐसे भी नहीं है, समर्पित हो गया पूरा गेहूं वस्त्र पहनकर। ये सब इस नॉलेज का परिणाम है, भगवद्गीता ये सब परिवर्तन का कारण है, सबका आधार वही है। इसमें जो सिद्धांत दिया है वो अगर आपकी मुमुक्ष प्रवृत्ति हो गई, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए परफेक्ट नॉलेज है ये, लेकिन ये इच्छा उत्पन्न करने के लिए इसका एडवर्टाइज करना पड़ेगा, है ना। वी हैव टू टॉक अबाउट इट समथिंग समवेयर कि ये क्या है, इसके अंदर क्यों पढ़ना चाहिए इसको। ऐसे कहा गया है कि भगवद्गीता का 700 श्लोक में से किसी भी एक श्लोक को अगर आप एक चौथाई भी फॉलो करेंगे ना तो भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। 1/4 ऑफ वन ऑफ द 700 श्लोकस इफ यू अडॉप्ट एंड अप्लाई टू योर लाइफ यू विल अचीव द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। ऐसे शिवजी अपने पार्वती को गीता महात्म्य में बता रहे हैं, शिवजी अपने पत्नी को इसका महात्म्य बता रहे हैं, उसमें ऐसा वर्णन आता है। कितने पावरफुल है ये, एक एक श्लोक अगर हम एक श्लोक समझ जाए उसका 1/4 भी अप्लाई करें ना तो भी हमको ये कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, इस सारे त्रिगुणों से परे पहुँचा देगा, दिव्य स्तर पर पहुँचा देगा। आपका जीवन ही दिव्य स्तर पर होगा, आपके विचार आपके कार्य सब कुछ दिव्य स्तर पर होगा, इतनी शक्ति है इसमें भगवद्गीता में। तो आइए भारतवासी होकर, चलो हम युवा अवस्था में है या मध्यम अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में या अति वृद्ध अवस्था में है या गृहस्थी अवस्था में है या बैचलर है या विद्यार्थी है, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, ये शास्त्र सबके लिए जरूरी है। और इस शरीर को त्यागने के पहले इस शास्त्र को तो पढ़ना ही पढ़ना है, किसी विद्वान के किसी गुरु जी के नेतृत्व में उनकी शरणागति में इसको प्राप्त करना है, तब जाकर हम आपको मनुष्य भारतीय कहला सकते हैं, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ ही कह सकते हैं। व्हाट इज द यूज, आए और गए, बहुत कुछ किया, कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं गए, छोड़ना सब कुछ यही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं मेरी क्षमता के अनुसार कोशिश करूँगा, जितनी मेरी क्षमता है। माइक दे सकते हैं उनको, किसी को अगर पूछना है तो माइक दीजिए उनको।
नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी है। आपने बोला कि गीता पांचवा वेद है, फिर आपने बोला कि
नहीं, गीता पांचवा वेद नहीं बोला, महाभारत पंचम वेद है। महाभारत पंचम वेद है और महाभारत के अंदर गीता अंतर्भूत है, गीता को महाभारत में सम्मिलित किया है ज्ञान के सार के रूप में। You have a question?
Yes. आपने बोला अर्जुन डिप्रेशन में गया, डिप्रेशन से उसको ज्ञान योग तक कृष्णा जी ने लाया भगवद गीता के माध्यम से। अभी आजकल एक कॉमन डिसीज हो गया है डिप्रेशन। लोग डिप्रेशन में कुछ ना कुछ रीजन से, कोई को कुछ माने उसका लिए हजारों रीजन हो सकते हैं डिप्रेशन, डिप्रेस होते हैं और हम भी उसका शिकार हुआ था, हो गया था और बाहर आना पड़ा। लेकिन ये डिप्रेशन से बाहर आने के लिए सुलभ उपाय आप जरा बताएंगे तो।
सुलभ उपाय यही है क्योंकि हम सब लोग उससे गुजर गए, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, हमको नम्रता से स्वीकार करना होगा। हाँ, एक बार नहीं कई बार, अभी एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के पहले हैं, वो एडमिशन मिला तो उसके पहले नहीं मिल रहा है, मिल रहा है उसके बीच में, हाँ SSC में, 12th में, हर जगह पर ऊपर नीचे होते होते ही आगे चले गए। उसके बाद में शादी के समय है, उसके बाद में बच्चे के समय में है, उसके बाद में और जीवन की समस्याएं हैं, जीवन तो पूरा ऐसे ही ऊपर नीचे होते रहता है। तो ये क्यों होता है, डिप्रेशन आता क्यों है, क्योंकि हम लोग ना बहुत वस्तुओं से अटैच्ड हैं, आसक्त हैं हम लोग, और जिस वस्तु से आसक्त हैं वो जब हमको दगा देती है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। जैसे हम बहुत पैसे से आ सकते हैं और पैसा ही हमको छोड़ के चला जाता है तो डिप्रेशन आता है, और बहुत हमारे परिवार से आ सकते हैं और वो हमको धोखा दे देते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब हमारी कुछ अपेक्षा है किन किन वस्तुओं से, धन से, परिवार से, बच्चों से, पत्नी से, माता पिता से, जो भी दोस्त हैं या और कोई परिवार के जन हैं, वो सबसे हम लोग आसक्ति में कुछ अपेक्षा रखते हैं, और वो अपेक्षाएं नहीं पूरी होती हैं। वर्ल्ड का डिजाइनिंग ऐसा किया गया है कि आपकी सारी अपेक्षाएं हर व्यक्ति से हर स्थिति से नहीं पूरी होती है, वो धोखा देगी बीच में आपको और आपको इस स्थिति में लाएगी वो। तो नंबर वन इसका कारण आसक्ति है। ओके, अभी वही आसक्ति अगर हम उसका विषय बदल देते हैं और वो आसक्ति भगवान के लिए करते हैं और बाकी जिनके लोगों से हमारी आसक्ति है उनका संबंध उनके संबंध में देखते हैं, लाइक आई सी यू एज माई फ्रेंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मेरा आपकी दोस्ती जो है ना भगवान के विषय में है, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है वो भगवान के संबंध में विषय हमारा विषय में संबंध हुआ है, हमारे जो पुत्र पुत्री हुए हैं वो भगवान के विषय में ही उनका जन्म हुआ है और उसी संस्कार में वो चले हैं, तो फिर उतना आपको दुख नहीं होगा। आप अपना कर्तव्य करते रहेंगे लेकिन आसक्ति में डिप्रेस नहीं होंगे, यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। गीता का आपको सबसे बड़ी भेंट क्या है, व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ गीता, यू विल लर्न टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर नॉट एज यू वॉन्ट देम टू बी। हमारा डिफिकल्टी क्या है, हम लोग हर वस्तु को जैसे मुझे चाहिए वैसे वो होनी चाहिए, ये आसक्ति में हम लोग अटके हुए हैं। एवरीबडी इज अटैच टू थिंग्स द वे ही वॉन्ट्स द थिंग्स टू बी द वे ही इट वॉन्ट टू बी। लेकिन जैसे हम भगवद्गीता के स्पर्श में आते हैं तो हम लोगों को जो चीज़ें जैसी है वैसे हम उनको समझते हैं पहले कि ये ऐसा है और वैसा हम स्वीकार करने में भी सक्षम हो जाते हैं, वी बिकम एलिजिबल स्ट्रांग इनफ टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। और वो शक्ति कैसे आती है, भगवान से जुड़ने से आती है। और भगवान से जुड़ना कैसे है, भक्त्या माम अभिजानाती, और भक्ति कैसे करनी है कलयुग में, उनका नाम लेकर। सी अल्टीमेटली ना इट बॉयल्स डाउन टू चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड कनेक्टिंग विथ हिम, establishing the connection, and then you will get the messages, you will get realizations, you will get guidance, everything will come from that. First to establish, agar aapko kisi dhani vyakti se milkar business sikhna hai, first kya karna hai, establish contact with him, convince him ki I want to learn from you, aap mere guru ho, main aapka shishya hu, mujhe sikhaiye business kaise karna hai. To sambandh jab tak nahi hota hai tab tak gyan kaise milega aapko. To bhagwan ke bhi teen star hain, bhagwan se pehle hum sambandh karne ke pehle थोड़ा थोड़ा दुनिया से संबंध हटाना चाहिए। यहाँ पर पूरा फंसे रहेंगे तो उनका संबंध नहीं बन सकता आपका, उनसे संबंध बनाने के लिए कुछ कुछ पूरा नहीं कुछ कुछ थोड़ा छोड़ना पड़ेगा आपको उनका संबंध बनाने के लिए। फिर वो संबंध हो जाएगा तो उस संबंध के बाद में हम लोग उनकी सेवा में लग जाते हैं, उसको संस्कृत में अभिधेय कहते हैं, जो संबंध के बाद में अभिधेय होता है और फिर सेवा में परिपूर्ण होते हैं उसको प्रयोजन कहते हैं। तो जब प्रयोजन स्थिति में हम लोग आते हैं तो हमारा पूरा परफेक्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ संपर्क है उनका, पूरा नॉलेज उनकी तरफ से हमको अंदर से प्राप्त हो जाता है साक्षात्कार के रूप में, फ्रॉम विद इन इट विल बी रिवील टू यू। फिर वो एक बार वो उनका संबंध हो गया ना, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिप्रेशन। आई कैन टेल यू माई एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू डिप्रेशन, आई हैव कम आउट ऑफ डिप्रेशन, आई हैव स्टडीड द होल सिस्टम, आई हैव डिड माई सेल्फ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। तो मेरा ये नतीजा है, मेरा ये कंक्लूजन है कि भगवान के साथ सही तरीके से संबंध करने के बाद में डिप्रेशन कभी किसी को होगा नहीं, बिकॉज उसका उत्तर यही है कि चीज़ों को जैसे है वैसे स्वीकारने की शक्ति निर्माण होती है, और वो होगी तो डिप्रेशन नहीं आएगा, वो नहीं होगी डिप्रेशन आएगा। आज अगर हम चीज़ों को 90% स्वीकार कर रहे हैं एज दे आर और 10% अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, 10% चांसेस है डिप्रेशन आने का। जब 100% आप स्वीकार करेंगे ना थिंग्स एज दे आर, जो है मेरी बेटी मेरा बेटा मेरी पत्नी मेरे पिताजी माताजी मेरे भाई मेरी आर्थिक स्थिति मेरे बिजनेस की स्थिति जैसी है वैसे आप स्वीकार करेंगे ना आज के तारीख में, तो आपको डिप्रेशन नहीं आएगा कभी।
थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन पूछने वाला?
यस, यू हैव क्वेश्चन? यस, एनी कमेंट, एक्सपर्ट कमेंट्स, बेटर हाफ कैन गिव बेटर कमेंट्स। एनीथिंग एल्स एनीबडी? तो मैं आपको विनती करूँगा, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा कि फाइनली ना टिल द काउज कम होम टुमारो, मतलब टिल टुमारो सनसेट वी कैन गो ऑन डिस्कसिंग दिस, लेकिन करना क्या है, फाइनली करना क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, करना क्या है बताओ। वो करना यही है कि जो भगवान से संबंध टूट चुके हैं हमारे किसी दुर्भाग्यवश से, किसी कारण से, किसी परेशानी से, किसी जन्मों के कर्मों की वजह से जो टूट चुके हैं, उस संबंध को रीस्टैब्लिश करना है। और री एस्टैब्लिश करने के लिए भगवान ने सत्ययुग में ध्यान बताया था, त्रेता में यज्ञ बताए थे, और द्वापर में मंदिरों की पूजा बताई थी, और कलयुग में क्या कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ, ओनली नेम एंड नेम, नथिंग एल्स। तो वो नाम के आधार पर संपर्क बनाना है, एस्टैब्लिश करना है, और वो नाम के आधार पर संबंध बनाकर हृदय को परिवर्तित करना है, नॉट रिमेन सेम कि भाई वही बोट में बैठे हुए हैं और उसका जो एंकर है वो निकाला नहीं है और रात भर उसको रो कर रहे हैं, हवा भी बह रही है, पेड़ भी बह रहे हैं और पानी भी हिल रहा है, आपको लगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, सुबह उठ के क्या देखते हैं, अरे वही तो वही है, हम लोग रात को जा निकले थे, वो झूम झूम के गीत गाते हुए उसको बोट चला रहे थे, लेकिन एंकर तो निकाला नहीं हम लोग ने। वैसे हमारी कुछ अवस्था होगी, अगर हम थोड़ा सा विरक्त होकर भगवान के चरणों में जाएंगे ना तो हमारी बोट आगे बढ़ेगी, और एंकर जब तक लगा हुआ है, एंकर लगाकर सारा फिलॉसफी बताते रहेंगे ना, कुछ नहीं होगा, ऑल एफर्ट्स आर वेस्टेड, होल नाइट ऑफ रोइंग द बोट इज वेस्टेड बिकॉज यू आर देयर ओनली वेयर यू स्टार्टेड। वो निकलना है तो थोड़ा एंकर निकलना पड़ेगा, वो अपने हाथ में है, देखो आपको क्या करना है आपके हाथ में, मैं कहकर कुछ नहीं होने वाला है, यू हैव टू डू द वेलफेयर एक्टिविटी फॉर योर सेल्फ। मैं केवल बता सकता हूँ और मुझे किसी ने बताया था वो दोहरा सकता हूँ, पर करना आपको है। अगर आपका वो जो मटका है ना उल्टा रखा है तो मैं टनों टनों पानी डालूंगा ना तो भी वो बह जाएगा पूरा, उसको सुलटा रखेंगे तो कुछ जल जाएगा जितना कैपेसिटी है उसका, बड़ा रखेंगे तो बड़ा जाएगा, छोटा छोटा जाएगा, लेकिन उल्टा होगा तो ही जाएगा, ऐसा पालथा रखेंगे उसको तो फिर वो क्या फ़ायदा है उसका। तो संबंध बनाइए भगवान से, उसका नाम जपिए, उनका नाम जपने से आपको एक दिन गुरु की प्राप्ति भी होगी, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपके प्रामाणिक प्रयत्न के कारण आपको एक दिव्य साक्षात्कार साधु से मिलाएंगे और वहाँ से आपके आगे की प्रगति होगी। जैसे आपकी जेब में जब गुड़ रखेंगे ना गुड़, तो आपको चीटियों को इनवाइट नहीं करना पड़ता है, प्लीज़ कम मेरे जेब में गुड़ रखा है, आइए आइए, नहीं, वो गुड़ रखेंगे तो अपने आप चीटियाँ आ जाएंगी। उस तरह से आपका हृदय अगर भगवान के लिए व्याकुल हो रहा है, उनको मिलना है, आपको नाम ले रहे हैं उनका, तो भगवान उनको मिलाने के लिए उनके प्रतिनिधि गुरु को भेजेंगे और उनके द्वारा आपसे आगे मिलेंगे। अरे हमको करना है, हमको करना ही है ये, नहीं तो हमारा पूरा जीवन मनुष्य का भगवान ने जो दिया था प्लान बना के वो हम लोग उसको फेल कर रहे हैं। यस मैडम। हाँ जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो सबसे पहले अगर आपको अध्यात्म में इंटरेस्ट है तो आपके आहार शुद्धि आपको करना है, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज व्हाट यू ईट, और वहाँ से आपके मन की चंचलता कम होना या बढ़ना शुरू होगा, और आप सात्विक आहार करेंगे जिसमें तमोगुण, हाँ वो एक नंबर वन हो गया। नंबर टू, आपको ना मन को नियंत्रित करने के लिए रोज एक समय पर एक ही जगह पर बैठकर आपको जप करना होगा रोज, ठीक है। उसके बाद में मन के ऊपर कौन है, बुद्धि है, तो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए शास्त्र के विचार रोज करने चाहिए, मतलब ग्रंथ अध्ययन, जो बुद्धि के लिए एक प्रकार का वो दिव्य स्नान है जब हम शास्त्र पढ़ते हैं। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो वो मन को शुद्ध रास्ते पर नियंत्रण देती है वो, सो इट बिगिन्स फ्रॉम, इट्स ऑल कंप्रेहेंसिव प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है ये, ए बी सी डी, एकदम सिंपल बना के रखा है उसको, हाँ आधुनिक लोगों को समझने के लिए। ए का मतलब है जैसा संग वैसा रंग, आपको अपना संग चुनना होगा, किसी के साथ बैठेंगे किसी के साथ उठेंगे तो वही रंग धारण करेंगे आप। ढवळे क्या बोला थे, ढवळ्याच्या शेजारी पवळ्या बांधला वाण नाही पण गुण लागला, मतलब आपको संग आपका चुनना है नंबर वन। तो वो संग अगर सत्संग होगा, सत्य के विषय में करने वाला संग होगा, सत्य के विषय में प्रेरणा देने वाला, सत्य के पास ले जाने वाला अगर संग होगा तो उसको सत्संग कहते हैं, जो आपको भगवान की ओर और खींच रहा है। हाँ आज आपको अगर यहाँ बैठने से अगर भगवान के विषय में और प्रेरणा मिली है तो ही इस सभा को सत्संग कह सकते हैं हम। ओके नंबर वन, ए एसोसिएशन, संतों का संग, भगवान के विषय में किया हुआ संग, भगवान की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए किया हुआ संग। बी बुक्स, यानी ग्रंथों का अध्ययन, जो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहे गए जो विचार ग्रंथों में लिखे गए हैं हमारे, अलग अलग भागवत में है, वेदों में है, भगवद गीता में है, पुराणों में है, बहुत जगह पर लिखे हैं, उसको अध्ययन करना, समझना और पालन करने का अभ्यास करना। सी, नित्य नियम से चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना। और डी, डाइट, वही ग्रहण करना भोजन के रूप में जो आत्मा के कल्याण के लिए अनुकूल है। ए बी सी डी आप फॉलो करेंगे ना, आपका मन धीरे धीरे क्यों ना हो आएगा, निश्चित रूप से आएगा, और आपको समझेगा कि प्रगति पर है, ये भी आपको समझेगा, पूरा नहीं है लेकिन प्रगति पर है, ये भी मालूम पड़ेगा। लाइक यू नो बिफोर द एग्जाम डे यू नो हाउ मच प्रिपेयर्ड यू आर, इज इट नॉट ट्रू? एवरीबडी नोज कि मेरी क्या स्थिति है, फेल होने वाली है, डिस्टिंक्शन वाली है कि क्या, मालूम नहीं है, ये पता चलता है आपको ना, यू नो, सो एवरीबडी नोज। और हमारे अंदर क्या दोष विकार है भी हम जानते हैं बराबर से। तो ए बी सी डी विल पुट यू ऑन अ प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। गोंदव लेकर आप अभी भगवान से एक प्रार्थना कीजिए, मैं आपको विनती करता हूँ कि आपको सद्गुरु की मुलाकात हो जाए आपके लिए। अभी देखो गोंदलकर महाराज तो अभी है ना, बहुत समय हो गया ना उनको जाके, हाँ, तो उनके परिवार में हो, किसी परिवार में हो, सद्गुरु की प्राप्ति आपको हो जो आपको भगवान से मिला सके, ऐसी प्रार्थना कीजिए। फिर उनकी कृपा से आपको वो मिलेंगे, फिर उनका अनुकरण कीजिए, उनका उनको फॉलो कीजिए, उनके जीवन में उनकी आज्ञा पालन कीजिए, फिर आपको जरूर भगवान मिलेंगे एक दिन, निश्चित रूप से। हम सब भगवान के रूप हैं, ममय वांछो जीवलोके जीव भूत सनातन, हम सब भगवान के अंश हैं, कुछ बुझे हुए हैं, कुछ जले हुए हैं यही है और कुछ नहीं, सम आर लिट एंड सम आर एक्सटिंग्विश्ड, तो वी हैव टू यू नो गेट लिट, गेट द फायर अप इनटू द सोल, दैट्स व्हाई द लाइफ इज मेंट फॉर, अदरवाइज लाइफ इज वेस्ट। इफ यू डू नॉट लाइट अवर सोल द सुप्रीम, देन द लाइफ इज, इट कांट बी कॉल्ड एज लाइफ। जीवत शव समान, हम लोग सब जिंदा मतलब मुर्दे सब है, घूम रहे हैं, एवरीबॉडी इज, ऑल पीपल आर मूविंग इज ऑल डेड्स, वी हैव टू बिकम अलाइव टू द लॉर्ड।
थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्णा।
आपने इतना सुंदर रूप से भगवद गीता का हमका छोटे से समय में ज्ञान दिया, और जो भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे उसके भी आंसर्स दिए।